ओम शांति, ओम शांति। क्लास का विषय है संतुष्ट और प्रसन्न कैसे रहें। बाबा संगम युग पर हमको कहते हैं संतुष्टता ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, संतुष्टता ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है, यह संतुष्टता ही बड़े से बड़ा खजाना है, संतुष्टता ही विशेषता है। तो इस गुण को हम अपने जीवन में कितना अनुभव करते हैं उतना ही हम प्रसन्न रह पाते हैं, उतना ही हम खुश रहते हैं। संतुष्टता और प्रसन्नता एक सिक्के के दो पहलू हैं। वैसे भक्ति मार्ग में भी जो भक्त हुए हैं उन्होंने संतोष धन को सबसे बड़ा धन माना। कबीर दास जी ने कहा गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो संतोष धन आ गया जीवन में तो फिर कितने भी दूसरे धन हैं वो धन मिट्टी के समान लगते हैं। और इसीलिए जो भक्ति मार्ग में भक्त हुए उन्होंने त्याग को बहुत महत्व दिया, यानी त्याग और वैराग में संतुष्ट रहना, इसके आधार को परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग माना। ये माना कि ये जो स्थूल प्राप्तियां साधन है धन है ये ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में विघ्न है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता को बाबा हमें अलग तरह से अनुभव कराते हैं। बाबा ने कहा है सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन संतुष्ट जीवन होती है। ब्राह्मण जीवन में हमें सर्व प्राप्तियां हैं, इसीलिए कहा अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सुना है ना, कई बार बाबा कहते हैं देवताओं के खजाने में तो है ही है ऐसा कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, लेकिन अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। और क्यों? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता जो दाता है वरदाता है विधाता है वो हमारा पिता बन गया। बीज हमारे हाथ में है तो झाड़ तो अपने आप ही उसमें समाया हुआ है। तो सर्व प्राप्तियां वो बेहद की प्राप्तियां हैं, बेहद की प्राप्तियां। बाबा कहता है सभी को मैंने एक जैसा खजाना दिया है, एक ही के द्वारा मिला है, एक ही समय भी मिला है, लेकिन फिर भी सब उसको नंबरवार अनुभव करते हैं। नंबरवार है क्यों? क्योंकि जो मिला हुआ खजाना है उसको स्मृति में रखना, उसे कार्य में लगाना, ये हरेक मैंने कितना लिया है। देने वाला दाता तो सागर के समान दे रहा है, अब लेने वाले की झोली कितनी बड़ी है, कितनी गागर बड़ी है, उतना ही तो वो उसमें समाएगा। और इसीलिए फिर नंबरवार बन जाते हैं और कभी संतुष्ट होते हैं कभी असंतुष्ट हो जाते हैं। इस चक्र में हम कई बार चलते रहते हैं। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि इतनी बेहद की प्राप्ति है बच्चों को कि अभी आने वाले 21 जन्म स्वयं तो क्या, लेकिन जो स्वयं की वंशावली है, अब वंशावली वो प्रजा भक्त, भक्तों के भी भक्त, बाबा ने कहा वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे, लेकिन बेहद की प्राप्ति के स्मृति स्वरूप बनना है। अगर स्मृति स्वरूप नहीं है, सिर्फ दिमाग तक ये ज्ञान है कि हाँ हम प्राप्ति स्वरूप हैं, सर्व खजानों की प्राप्तियां हमें हुई हैं, तो फिर हद की प्राप्ति में हमारी बुद्धि चली जाती है। और हद की प्राप्ति का जो फल है वो अल्पकाल का होता है। हद की प्राप्ति माना जो स्थूल प्राप्तियां हैं आज के समय की, या सूक्ष्म में कहते हैं नाम मान शान की प्राप्तियां। असंतुष्ट क्यों होते हैं? स्थूल या सूक्ष्म कोई अप्राप्ति होती है तब व्यक्ति असंतुष्ट होता है। अगर उसको प्राप्ति है तो संतुष्ट रहेगा नहीं रहेगा? अगर मुझे भरपेट भोजन मिला है और जैसा भोजन मैं चाहती हूँ वैसा भोजन मुझे खाने को मिला है, वो 36 प्रकार के सभी व्यंजन थे उसमें, तो संतुष्ट होंगे भोजन खाकर? नहीं होंगे। असंतुष्टता का सवाल कब आएगा? तब जब जैसा भोजन मैं चाहती हूँ वैसा भोजन मुझे नहीं मिला, वो अप्राप्ति हो गई। तो अब यही बात हर चीज पर लागू होती है। तो स्थूल और सूक्ष्म में हम कहेंगे तन मन धन संबंध, ये चार भाग्य हैं, इनमें कहीं अप्राप्ति है तो व्यक्ति असंतुष्ट होता है। और सूक्ष्म में भी नाम मान शान में अगर कहीं अप्राप्ति है तो व्यक्ति असंतुष्ट होता है। तो ये प्राप्तियां सब बाबा ने हमें संगम युग पर कराई हैं और भविष्य में भी जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलने वाली हैं। सब भाग्य हमें प्राप्त रहने वाले हैं, इसमें कोई अप्राप्ति नहीं है। अगर हमने बाबा से प्राप्त उस अविनाशी खजाने को अपना बनाया है, और वो है ज्ञान गुण शक्तियां। विशेष जो बाबा से हमें अविनाशी खजाना प्राप्त होता है वो है ज्ञान गुण शक्तियां, और ये संगम युग का समय विशेष रूप से। और बाबा श्वास और संकल्प की भी बात कहते हैं कि संकल्प का खजाना भी वर्तमान समय हमारा सबसे बड़ा खजाना है। तो तन के लिए आज जो भी तन हमें मिला है, ये अंतिम जन्म का हमारा तन है, और इस तन के आधार पर ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपना ऊंच भाग्य बना रहे हैं। लेकिन ये भी बाबा ने हमें समझ दी है कि जितने भी 63 जन्मों के रहे हुए हिसाब किताब हैं, वो सब इस अंतिम जन्म में चुकतू कर कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनेंगे तभी हम सतयुग में आएंगे। तो कोई ना कोई तन के रोग के रूप में सभी तरह से हिसाब किताब हमारे चुकते होते हैं, चाहे तन से, चाहे मन की अशांति परेशानी है, चाहे धन की खींचा तान है, चाहे आपसी संबंधों में संस्कार स्वभाव का टकराव है, हम उनमें भी असंतुष्ट हो जाते हैं। तो ये हिसाब किताब तो हमारे सामने आने ही हैं, लेकिन इन्हें हमें कैसे संतुष्ट रह करके चुकतू करना है, ये विधि भी बाबा ने हमें समझाई है। लेकिन वही है कि जितना हम स्मृति स्वरूप रहते हैं, जितना हम ज्ञान को स्मरण करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, उतना सहज हम इन परिस्थितियों को पार कर लेते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। मानो तन का रोग आ जाता है ना, कोई छोटी मोटी बीमारी तो बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन मानो कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसे हम आज के समय में असाध्य बीमारियां कहते हैं। ज्यादातर बीमारियां आज लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं वो असाध्य ही हैं, चाहे किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, चाहे शुगर की बीमारी हो जाती है, हार्ट की बीमारी हो गई, अस्थमा हो गया, एसिडिटी हो गई, जीवन भर आपको इन बीमारियों के साथ जीना है, उसका कोई पक्का इलाज या पूरा इलाज किसी भी पैथी में नहीं है। आप दवाई खाते रहो और चलते रहो। तो जो भी है, बाबा ने हमें कहा कि जितना हम सोल कॉन्शियस स्थिति में रहते हैं, जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, अगर हमारा मन स्वस्थ है, आत्मा अगर स्वस्थ है, और यदि हम बेफिक्र बादशाह हैं, अगर आत्मा स्वस्थ है तो इसका मतलब हम फिक्र नहीं करते। हमने सारे फिक्र किसको दे दिए? बाबा को दे दिए, क्योंकि बाबा हमारा सब बोझ लेने वाला है। भगवान ने हमें कहा कि कोई भी फिक्र अपने ऊपर मत रखो, मैं बैठा हूं। किसको दे दो अपनी चिंता? लिखते हैं चित्र में लिखा, तुम चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूं। तो बाबा ने गारंटी ली है हमारी कि हम उसे दे दें। आज मेडिकल साइंस कहती है 70% बीमारियां होती हैं टेंशन के कारण। दुनिया वाले तो बहुत टेंशन लेते हैं, आज बच्चों की चिंता है, उनके कैरियर की, उनकी शादी की चिंता है, उसके कारण फिर धन की चिंता है, फिर बीमारी हो गई, कोई घर में बीमार हो गया उसकी चिंता है, फिर रिटायरमेंट के बाद क्या होगा चिंता की लाइन होती है, होता है नहीं होता? और अगर हम भी वैसे ही चिंता करेंगे तो उनमें और हम में अंतर क्या हुआ? तो इसका मतलब हमें ये सब चिंताएं आएंगी तो सही, ये चिंताएं हम भी घर ग्रस्त में रहते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, उनका भी कैरियर होता है, उनकी भी नौकरी होती है, उनके भी बीमारी होती है, कुछ भी परिस्थिति हमारे सामने भी यही आने वाली है। लेकिन वो उसे किस रीति से पार करते हैं और हम उसे किस रीति से पार करेंगे, उसमें अंतर होगा नहीं होगा? क्या कहेंगे? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ज्ञानी अज्ञानी में अंतर तो यही होगा ना, कि इन परिस्थितियों में भी हम निश्चिंत रहकर शांति से, धीरज से, बाबा की याद से, बाबा की मदद से हम इसे सहज पार कर लें। अगर हम करते हैं तब हम संतुष्ट हैं, और अगर हम भी ज्ञान को भूल जाते हैं, ज्ञान सिर्फ क्लास में सुनने के लिए है, मुरली सुनने के लिए आए, सुना, काम पूरा हुआ, बाद में वैसे के वैसे कैसे चिंता होने वाली है? जैसे उनको होती है, हम भी उन्हीं का एक हिस्सा हैं, उसी दुनिया का एक भाग है, फिर हम कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते, रह पाएंगे? कोई ना कोई चिंता लगी रहेगी मन के अंदर, आज ये समस्या, आज ये समस्या। तो तन की बीमारी भी बाबा कहता है कैसी भी हो, आज ब्राह्मणों को भी आती है बीमारी, ऐसी नहीं कि नहीं आती, महारथी आत्माओं को भी आती है, जो अच्छे अच्छे महारथी हैं वो भी ऐसे नहीं है कि बीमार नहीं होते हैं, लेकिन मन की स्थिति अगर निश्चिंत है तो वो कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है, उसे भी हम सहज पार कर लेते हैं। और उस राज को हम जानते हैं ना, तो राज को जानते हैं तो वो नाराज नहीं होते कभी भी कि क्यों ये आई, और ये तो अब सदा के लिए विदाई लेने के लिए आई है मेरे से, अब आने वाले 21 जन्मों तक हम तन का कोई रोग अनुभव नहीं करेंगे, सदा के लिए हम स्वस्थ रहेंगे, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी जीवन हमारी बनने वाली है। तो ये तो इसकी अंतिम विदाई है, इसके लिए बीमारी आई है। ऐसे ही मन सदा ही प्रसन्न चित्त हो, ये संतुष्टता की निशानी है। संतुष्ट हैं तो प्रसन्न रहेंगे। तो बाबा कहता है वो बाप से, ड्रामा से, सर्व से, प्रकृति से, इन सब से संतुष्ट होंगे। केवल स्वयं से संतुष्ट होने की बात नहीं, लेकिन जो भी हमारे, कई बार बाबा से आत्माएं संतुष्ट हो जाती हैं, बाबा पर दोष रखते हैं, बाबा ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा क्यों बनाया, कहते नहीं कहते, कोई कोई शिकायत करते हैं बाबा से, बाबा को उलाना देते हैं, फिर ये भी कहते हैं कि मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है, हम क्या करें, मेरा भाग्य ही भाग्य विधाता ने ऐसा बनाया है, या कोई आत्मा के साथ मेरा हिसाब किताब है तो वो आत्मा हमेशा किसी ना किसी तरह से मेरे सामने आती रहती है तो उसके कारण हम असंतुष्ट हो जाते हैं। जिससे भी हमारा हिसाब किताब होता है, मानो हर दिन आप उसके संपर्क में आते हैं, वो आत्मा कहीं आपके आसपास ही होती है, आपके परिवार की सदस्य हो सकती है, या जहां हम काम करते हैं वो काम करने के स्थान पर भी हो सकती है, और रोज हम उसको देखते हैं, उसको देख करके मेरे मन में क्या संकल्प चलने लगते हैं, नेगेटिव, क्योंकि हिसाब किताब है। स्नेह सहयोग जहां नहीं है, जहां हिसाब किताब है, वो आत्मा मेरे मन में कहीं ना कहीं द्वेष का भाव, घृणा का भाव, हाँ, या जिसे हम कहेंगे कि कोई ना कोई नेगेटिव भाव पैदा करेगी और हम असंतुष्ट हो जाएंगे उसके संपर्क से। तो संतुष्ट माना सदा निस्वार्थ और निर्दोष दृष्टि वृत्ति वाले, ये बाबा कहता है। तो किसी का भी दोष नहीं है ड्रामा में, और अगर मेरा स्वार्थ नहीं है जिनके भी संबंध में मैं आ रही हूं, अगर हम दातापन की भावना लिए हुए हैं, स्वार्थ माना इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब मेरे को उससे कुछ चाहिए तभी तो स्वार्थ है ना, या उसको मेरे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए वो हम भूल जाते हैं, और हम क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं उसको कैसा करना चाहिए। तो मानो हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं तो कभी भी हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि दूसरों से की जाने वाली अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि उनका जीवन हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको नहीं बदल सकते हम। बदल सकता है कोई किसी को? हम किसको बदल सकते हैं? अपने आप को। इसीलिए बाबा ने कहा निस्वार्थ रहेंगे तो संबंध संपर्क में संतुष्ट रहेंगे। और दूसरा सदा निर्दोष माना किसी का दोष नहीं है, भगवान का भी दोष नहीं है कि भाई मेरा ड्रामा में ऐसा पार्ट क्यों बनाया, मेरे को जो पार्ट मिला है उस पार्ट में रहकर के मैं संपन्न और संपूर्ण नहीं बन सकती, ये कोई बंधन बाबा ने दिया है हमको? हाँ, चाहे हम प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे हम कुमार कुमारी हैं, चाहे समर्पित होके सेवा करते हैं, सबके लिए पढ़ाई कैसी है बाबा की? अलग अलग पढ़ाई है क्या? समर्पित वालों को अलग, घर गृहस्थ में रहने वालों को अलग, जैसे दुनिया में अलग अलग कोर्सेज होते हैं ना, हमारा तो एक ही कोर्स है सबके लिए। तो किसी भी पार्ट में हम हैं, हमने कितना पुरुषार्थ किया है, अपनी स्थिति कैसे बनाई है, उस पर ही हमारे नंबर हैं। तो ड्रामा में पार्ट का कोई बंधन भगवान ने नहीं रखा है। फिर दूसरा कि ये आत्मा के साथ मेरा हिसाब किताब ऐसा है, उसको भी हम दोष नहीं देंगे, क्योंकि यहां भी इस राज को हम जानते हैं कि सारे हिसाब किताब सबके साथ हमें यहां ही खत्म करने हैं। तो ठीक है, हमने कभी उनके साथ ऐसा किया होगा तभी वो आत्मा आज हमारे साथ ऐसा कर रही है ना? तो वो कई बार मल्टीप्लाई होकर हमारे सामने आता है, हो सकता है हमने कुछ थोड़ा सा किया होगा लेकिन इतने सालों के बाद वो ब्याज सहित अपना हिसाब किताब चुकतू करती है। तो फिर अगर हम शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं उसके प्रति, जो बाबा ने सिखाया है, कैसी भी आत्मा है उसके प्रति सदा मेरा भाव, मेरी वृत्ति शुभ होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए, तो वो हिसाब किताब को खत्म कर देता है, वो मेरा पुण्य का खाता जमा करता है। तो ये विधि है उसको खत्म करने की। फिर प्रकृति, कई बार प्रकृति को दोष देते हैं, प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, क्या करें? लेकिन प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने वाले कौन? प्रकृति तो रचना है और बाबा ने हमें मास्टर रचयिता बनाया है, तो ये भी मेरा कर्तव्य है। प्रकृति, अगर हम प्रकृति पति के समान में हैं तो प्रकृति हमारी हमेशा सहयोगी होगी। बाबा ने कई बार कहा है, मानो आज कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है कई कई स्थानों पर, और जो बच्चे बाबा की याद में होते हैं उनको पूरा सहयोग मिलता है, उनको कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे बहुत भाई बहनों के अनुभव हैं कि कैसे सहज वो उससे पार हो जाते हैं। तो ये हमारी अपनी स्थिति, याद की स्थिति और सम्मान की स्थिति पर है कि प्रकृति हमारी सहयोगी बनती है, और उस प्रकृति के वातावरण को परिवर्तन करना ये हमारा कर्तव्य है। बाबा ने हमें विश्व कल्याणकारी बनाया है। तो फिर ड्रामा पर भी दोष नहीं रखना कि ड्रामा में मेरे साथ ऐसा क्यों और वैसा क्यों, हम लेट क्यों आए। कई बार इस बात से असंतुष्ट होते हैं कि हम बाबा के ज्ञान में बहुत लेट आए, बाबा ने हमें इतना देरी से क्यों बुलाया, हम भी पहले आ जाते तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लेते, हम भी बहुत आगे चले जाते, हम भी नंबर वन में आ जाते। पर बाबा कहता है कई नंबर वन में उस समय आए, आगे आए, लेकिन फिर क्या हुआ, बीच में चले गए, है ना। और अभी हम लास्ट में आए हैं मानो, तो उसका भी फायदा है या नहीं। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, ये वरदान है। और बाबा कहते हैं आप तो मक्खन खाने के टाइम पर आए हो, लोगों ने मेहनत कर करके मक्खन निकाला, आज कितना रिफाइंड ज्ञान मिलता है, कोई मेहनत करनी पड़ती है। तो मक्खन खाने के टाइम पर आए हैं, सिर्फ हजम करना किसका काम है, सिर्फ हजम करना वो हमें आना चाहिए। तो किसी की भी कोई शिकायत, कोई उलाना भगवान नहीं रखता कि हम पहले क्यों नहीं आए और हम लास्ट में क्यों नहीं आए। देखो आज पुरुषार्थ की विधियां कितनी सहज हैं, घर बैठे आपको सब मिलता है, क्लासेस मिलती हैं, सभी को मुरली मिलती है, सबके हाथ में मुरली आ जाती है। हाँ, नहीं तो टेलीविजन पे मुरली आ जाती है। पहले तो मुरली के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता था, यहाँ से बाबा टेप भर के भेजते थे, जैसे साकार मुरली में हम सुनते हैं कितने दिनों के बाद पहुंचेगी, या मुरली जब प्रिंट होगी वो टाइप होती थी, एक एक महीना लेट पोस्ट पहुंचती थी सेंटरों पर जब पोस्ट जाती थी, और आज एक क्लिक होता है, ईमेल का एक क्लिक होता है और मुरली पहुंच जाती है। तो कितनी सहज विधि है आज ड्रामा में पुरुषार्थ करने की, पर करने वाला चाहिए। तो ये सब अगर हम प्रश्नों से पार चले जाते हैं तो प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। बाबा कहता है जो प्रश्न चित्त है वो प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता, और जो प्रसन्न चित्त है उसको प्रश्न कभी भी नहीं होंगे। फिर धन की बात आती है, धन को लेकर के, क्योंकि आज धन का बहुत महत्व है, धन से ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा है, जो सुख सुविधा के साधन हैं वो कितने हैं हमारे पास, तो फिर उसको लेकर के कई बार असंतुष्ट हो जाते हैं। बाबा तो गरीब निवास हैं, जो बाबा के बच्चे बनते हैं वो कई बहुत साधारण होते हैं, मध्यम परिवारों के होते हैं, और जरूरी नहीं है कि वो सब साधन उनके पास हों। तो बाबा कहता है कि अगर हम गरीब भी हैं, बहुत तो ऐसे हैं जो आवश्यकता से अधिक है जिनके पास, और अपनी रीति से वो संपन्न है, माना उनको अपनी आवश्यकताओं के लिए कोई कठिनाई नहीं होती है, लेकिन फिर भी सभी तरह के हैं, कुछ गरीब भी हैं, साधारण हैं, कुछ मध्यम भी हैं। तो अगर हम गरीब भी हैं मानो, तो बाबा कहता है लेकिन कभी भी अपने को गरीब नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि कौन सा धन हमें मिला है, हम अविनाशी धन से साहूकार हैं। अभी बात किया ना, हमें जो ज्ञान धन मिला है वो एक एक रतन लाखों का है, अगर उसकी कीमत हमें है। एंड कहते हैं नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान धन है, वो स्थूल धन को भी लाता है। अभी संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा मानो कोई गरीब भी है और अगर उसके पास ये अविनाशी खजाना है तो उसे वो कमाई भी होने लगती है जो स्थूल धन की कमाई है। तो इसीलिए हर कदम में बाबा के जो बच्चे कदम उठाते हैं, एक कदम उठाया वो पद्मों की कमाई जमा करने वाला है। हम कदम में पद्म कमा सकते हैं और पद्मा पद्म पति हैं और बनने वाले हैं। बाबा कई बार कहते हैं, क्या कोई ऐसा बिजनेसमैन है दुनिया में जो एक कदम उठाए और पद्म कमा ले? चलो एक कदम उठाएगा एक सेकंड में 1 करोड़ कमा लेता होगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन पद्म तो नहीं कमा सकता। तो हम जो कमाई करते हैं वो कमाई इतनी ऊंची और श्रेष्ठ कमाई है जो आज भी है और हमारे साथ जाने वाली भी है। तो इस धन से हम साहूकार हैं। तो धन की भी वही है कि अगर हम स्मृति स्वरूप हैं, ये प्राप्तियों की स्मृति हमें रहती है, तो फिर वो खुशी वो नशा हम अनुभव करते हैं। और यदि सिर्फ सुनकर खुश होते हैं, दिमाग तक रह जाता है, तो फिर वही हद की प्राप्तियों में फिर बुद्धि जाती है। फिर हद की प्राप्ति माना, ठीक है घर है तो सही लेकिन छोटा है, थोड़ा और बड़ा घर होना चाहिए ना, फिर एक कार तो होनी ही चाहिए, और किसी के पास एक है तो फिर वो सोचते हैं कि एक कम पड़ती है, ज्यादा मेंबर है, एक दूसरी भी होता है आज के समय में, ये हद की इच्छाएं। तो बाबा कहता है, कार तो क्या क्या मिला है आपको, कारों का खजाना मिल गया है। तो ये हद की इच्छाओं के पीछे जाना ऐसे ही है जैसे परछाई को पकड़ने की कोशिश करना। वो परछाई पकड़ में आती है, आती है, लेकिन क्या करना होता है परछाई को पीछे लाने के लिए, सूरज की तरफ या लाइट की तरफ मुंह कर दो आप, परछाई अपने आप पीछे आएगी। तो जितने हम योग युक्त हैं हमारी आवश्यकताएं भी सहज पूरी होती हैं, उसके लिए भी हमें बाबा को कहने की जरूरत नहीं होती है। सब ब्राह्मण अनुभव करते हैं अपने जीवन में। केवल बाबा को भूलकर हद की इच्छाओं के पीछे अपना समय और शक्ति लगाना, धन कमाने के पीछे अपना टाइम और एनर्जी लगाना, उससे हम संतुष्ट नहीं होने वाले और उससे हमें वो सर्व प्राप्तियां भी नहीं होंगी, क्योंकि ये इच्छाएं ऐसी होती हैं, एक पूरी होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी, वो पूरी होगी तो तीसरी शुरू हो जाएगी। जैसे दुनिया में लोग क्या करते हैं, हाँ वो सोचते हैं कि इतने लाख कमा लें बस फिर ठीक है, उसके बाद अब फिर आगे नहीं सोचेंगे, हम कमा लेते हैं फिर क्या सोचते हैं, इतना हो गया अब थोड़ा सा इतना और हो जाए तो सदा ही 99 के फेर में, जिसको कहते हैं ना, कभी भी वो फेर खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए इच्छाओं को दुख का कारण माना गया, भक्ति मार्ग में भी ये कहते हैं। तो बाबा ने इसीलिए हमें कहा कि हद की प्राप्तियों के पीछे हमें नहीं जाना, लेकिन बेहद की प्राप्तियों के स्मृति स्वरूप हमें रहना है। फिर संबंधों की बात जहां आती है, तो संबंधों में भी जहां स्नेह है, जहां सहयोग है, वो संबंध हमें संतुष्टता देते हैं, हम संतुष्ट रहते हैं। और खासकर हमारा अलौकिक परिवार, देवी परिवार, बेहद का परिवार है, तो लौकिक संबंधों में हम संतुष्ट हैं या नहीं, लेकिन अलौकिक परिवार में तो वो स्नेह सहयोग हम सदा महसूस करते हैं। और अगर लौकिक के साथ हमारा कुछ हिसाब किताब है भी, कई बार वो विघ्न डालते हैं हमारे पुरुषार्थ में, सब परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते, उन्हें हमारी धारणाएं पसंद नहीं होती, सुबह सुबह अमृत वेले उठना, उठ करके मुरली क्लास में जाना, फिर उनके साथ हम भोजन हम उनकी तरह से नहीं करते, लहसुन प्याज नहीं खाते, उनकी तरह से हम शादी ब्याह में नहीं जाते, जो भी बातें हैं, तो ये सब होता है कि वो हमारी इन सब बातों को, धारणाओं को पसंद नहीं करते। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे असंतुष्ट हो जाएं। हमें समझ है, उनको ज्ञान है, और हमें क्या प्राप्ति हो रही है, हमें कौन मिला है, वो कोशिश करके हमें अपने चलन और चेहरे से उन्हें अनुभव कराना है। वो हमारे ज्ञान से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम हमेशा से उनके साथ रहे हैं तो वो हमें जानते हैं। और इसीलिए वो कहावत भी है ना, क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, जो घर के लोग ज्ञान सुनाएंगे उसको वो महत्व कभी भी नहीं देने वाले, बट उनके जीवन का प्रभाव उनके ऊपर जरूर पड़ता है। तो हम उनको संतुष्ट करना सीखें। इसीलिए बाबा कहते हैं संतुष्ट रहना भी है और संतुष्ट करना भी है। तो मैं अपने चलन से, अपने व्यवहार से उनको संतुष्ट रखूं, उनको हम नाराज नहीं करें, युक्ति से चलें। कई बार बाबा हमें इसे कहता है, युक्ति से हमें चलना चाहिए, ये झूठ बोलने वाली बात भी नहीं है। कल्याण के लिए अगर हमें कई बार कहकर आना पड़ता है कि हम तो टूर पर जा रहे हैं, या कई बार माताएं कहती हैं हम फलाने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, और आ कहाँ रहे हैं, हम मधुबन आ रहे हैं, वहां तो नहीं जा रहे लेकिन मधुबन आ रहे हैं। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हमने झूठ बोला। कई बार उनको पता भी चल सकता है, ये भी स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन वो एकदम नाराज ना हो तो थोड़ा सा आत्म कल्याण के लिए। और इसीलिए कहते हैं अगर कल्याण के लिए कोई झूठ भी बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता है। वो एक कहानी सुनिए ना, गाय के लिए पूछा, वो कसाई उसका पीछा कर रहा था और एक सन्यासी थे, उन्होंने देखा किस तरफ गई है, लेकिन उसने कहा मुझे नहीं पता वो गाय कहाँ गई है, जब कसाई ने उसको पूछा। तो फिर उस समय उसने वो झूठ बोल करके गाय की जान बचाई, तो वो पाप नहीं हुआ, क्या हुआ, पुण्य हो गया। तो कर्मों की गति समय स्थान स्थिति के अनुसार बाबा हमें कहता है होती है। तो हमें भी कई बार इस तरह की युक्तियों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें हमारा भी कल्याण होता है और उनका भी कल्याण होता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा मोल्डिंग पावर, मतलब जैसा समय स्थान, हम थोड़ा मोल्ड हो जाते हैं, हम फ्लेक्सिबल रहते हैं, एकदम रिजिड नहीं। जैसे कई लोग होते हैं अपने धर्म के मामले में बहुत रिजिड होते हैं, तस्से मस नहीं होते। बाबा ने हमको ऐसा हठयोगी नहीं बनाया है। अगर वो हमें अनुरोध करते हैं कि हाँ आप हमारे इस फंक्शन में आना, शादी ब्याह में आना, ठीक है, हम अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए वहां जाते हैं, वो भी बाबा हमें मना नहीं करता है। तो संबंधों में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ये विधियां भी बाबा ने हमें दी है संगम युग पर। और फिर मानो कोई संतुष्ट, कोई संबंध की कमी है, मानो जीवन में किसी को होता है, किसी को भाई नहीं है, किसी को माँ नहीं है, किसी को पिता नहीं है, तो यहाँ तो हमारे सर्व संबंध किसके साथ हैं, एक बाबा के साथ हैं। बाबा ही हमारे लिए संसार है, और हमारे लिए तो एक बाबा दूसरा ना कोई, सब उसमें समाये हुए हैं। तो संसार के कोई संबंधों की कमी भी है, वो कमी हमारी बाबा से पूरी होती है, तो वो असंतुष्टता भी हमारे जीवन में नहीं रहती। वो विशेष संबंध हम प्रतिदिन बाबा से अनुभव करें, वो हमारा पिता भी है, वो हमारा साथी भी है, वो हमारा भाई भी है, जो भी त्योहार होते हैं वो कोई ना कोई विशेष संबंध लिए हुए होते हैं। जैसे अभी हमने रक्षाबंधन मनाया, रक्षाबंधन मनाया तो बाबा हमारा भाई है, उस रीति से हम बाबा को अनुभव करते हैं। तो जैसे भक्ति में भी कहते हैं कि भगवान को भक्तों ने संबंधों से याद किया, तो जब उन पर मुसीबत आई तो उनकी रक्षा हुई, भगवान ने उस संबंध से उनको समय पर मदद की। तो हम तो चेतन में डायरेक्ट भगवान से संबंध रखते हैं, वो तो इनडायरेक्ट संबंध रखे हुए थे, तो भी मदद मिली, तो क्या हम बाबा के बच्चों को जो डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हैं, बाबा उस संबंध से हाजिर नहीं होगा। बाबा तो हमेशा कहता है आप कहो दिल से मेरा बाबा और हुजूर हाजिर हैं। और हमेशा ही बाबा कहते हैं कि मैं बच्चों के दिल में हूँ और बच्चे मेरे दिल में हैं। तो ये हैं हमारी स्थूल प्राप्तियां जो संगम युग पर हमें हैं। और फिर अगर सूक्ष्म प्राप्तियों की बात करें तो नाम मान शान की बात आती है, तो हम सबको नाम मान शान भी बाबा के द्वारा मिला है। और सबसे ऊंचा नाम मान शान मिला है जो ऐसा दुनिया में किसी को नहीं मिलता। दुनिया में तो दो तरह की पर्सनालिटी वाले नाम मान शान वाले होते हैं, एक तो जिनकी पोजीशन होती है, हाई पोजीशन वाले होते हैं, मानो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है या और भी मिनिस्टर हैं, ऊंची पोस्ट पर काम करते हैं उनको ये प्राप्तियां होती हैं। या फिर कोई शारीरिक पर्सनालिटी वाले होते हैं, मानो गेम्स में है या कोई ऐसा प्रदर्शन करते हैं वो शरीर के द्वारा, तो उनको नाम मान शान मिलता है। लेकिन हमारे लिए वो वाला नाम मान शान नहीं, वो चाहिए वो वाला नाम मान शान, वो तो छोड़कर आए हैं, कईयों को होगा भी उस दुनिया में, लेकिन बाबा मिल गया उसके आगे हमें वो, फिर वो प्राप्ति बहुत छोटी लगती है। यहाँ नाम दिया भगवान ने हमें, हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, हम सभी सच्चे ब्राह्मण हैं बाबा के बच्चे। और आज भी दुनिया में, कलियुग की दुनिया में भी ब्राह्मणों का नाम सबसे ऊंचा है। कोई भी शुभ कार्य होगा उसमें ब्राह्मण की उपस्थिति अनिवार्य है। और बाबा कहता है कि शरीर निर्वाह भी ब्राह्मणों का अपने नाम से ही चलता है। आज की दुनिया में भी अब वो कमाते हैं, ब्राह्मण होने के नाम से उनकी कमाई होती है। तो हमें तो, हम तो वो नामधारी ब्राह्मण नहीं है, अभी हम सच्चे ब्राह्मण हैं। तो इतना ऊंचा हमारा नाम है, जो ऊंचे ते ऊंचे बाबा ने स्वयं हमें दिया है। भगवान हमारा नाम खुद जपता है। कई बार बाबा कहते हैं ना, बाबा बच्चों की माला सिमरन करते हैं। हम बाबा को याद करते हैं लेकिन बाबा हमें याद करते हैं। भक्ति में तो भक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान उन्हें याद नहीं करते, लेकिन यहाँ तो बाबा हम बच्चों को याद भी करते हैं। फिर मान भी हमें मिला है, इतना ऊंचा स्वमान बाबा ने हमें दिया है। ऐसे स्वमान, ऐसे टाइटल्स दुनिया में कितनी भी ऊंची पोस्ट वाला व्यक्ति क्यों ना हो ही नहीं सकते उसके, हो सकते हैं। हम कौन हैं? हम वो श्रेष्ठ आत्मा हैं, महान आत्मा हैं, पवित्र आत्मा हैं, कोठों में कोई, कोई में भी कोई, भगवान के चुने हुए विशेष रतन हैं, बाबा के गले का हार है, बाबा के सिर का ताज है, पूज्य आत्मा है, देवी देवता बनने वाली आत्मा है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। आप भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हम रोज सुनते हैं, रोज मुरली में बाबा हमें कोई ना कोई समान की स्मृति दिलाते हैं। तो क्या क्या हम हैं, इतनी लंबी लिस्ट है। किसी को होंगे दुनिया में तीन चार टाइटल होंगे, तीन चार अवार्ड मिले होंगे, करके 10 अवार्ड मिले होंगे यहाँ तो, लेकिन सिर्फ यही बाबा कहता है कि कितना हम उसके स्मृति स्वरूप रहते हैं। तो हर रोज अमृत वेले अपना एक टाइटल हमें लेना है और सारा दिन कोशिश करके उसकी ही स्मृति में रहना, फिर देखिए आपको कितनी खुशी, कितना नशा रहता है, स्वतः ही संतुष्ट रहेंगे। दुनिया की छोटी मोटी चीजें मिले या ना मिले, हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे वो दिखाते हैं ना, दुनिया में भी जो शराबी होते हैं, वो शराब का नशा कब चढ़ता है उनको, जब पीते हैं। या जो भांग पीने वाले होते हैं, उनको भी वो नशा तब चढ़ेगा जब वो भांग पियेंगे। अगर पियेंगे ही नहीं तो उसे नशा चढ़ेगा। तो यहाँ भी बाबा क्या कहता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। घोटना मतलब क्या, उसको नहीं घोटना, भांग को नहीं घोटना है। क्या घोटना है यहाँ पर, क्या घोटना है? वो सोमान को बार 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 स्मृति में लाना है और अनुभव करना है। अगर मैं देवात्मा हूं तो मेरा भविष्य स्वरूप देवताई स्वरूप क्या होगा? देवताई स्वरूप में मेरे गुण क्या होंगे? देवताई स्वरूप की मेरी जीवन कैसी होगी? अगर सारा दिन मैंने इसे स्मृति में लाया तो वर्तमान कलियुगी जीवन की कोई परिस्थिति मुझे प्रभावित करेगी? नहीं करेगी। कितनी ऊंची स्मृति है, और जब मन की स्थिति ऊंची होती है तो छोटी छोटी बातें अपने आप नीचे रह जाती हैं। वो जैसे दिखाते हैं ना, एरोप्लेन उड़ता है हवा में, तो उसके लिए नीचे पहाड़ हैं, नदियां हैं, वो कोई बाधा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊंचाई है इतनी, उसके लिए वो कोई विघ्न ही नहीं है। तो मन की स्थिति ऊंची होगी, ऊंची स्थिति में जब हम होते हैं तो इस दुनिया की छोटी छोटी बातें तो हमें टच ही नहीं करती। वो कब आई कब चली गई हमें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि परिस्थितियां नहीं आएंगी, पर पास हो जाती हैं अपने आप। जिसको बाबा कहता है परिस्थिति भी मनोरंजन हो जाती है, परिस्थिति भी खेल हो जाती है। दुख दुख की अनुभूति नहीं कराता है, दुख की बात, लेकिन वो मुझे दुख की अनुभूति नहीं कराती, और ही मुझे जैसे तूफान तोफा बन जाएंगे कहते ना, या कांटे फूल बन जाएंगे, ऐसा अनुभव होना ये ज्ञान की स्थिति है, ये योग की ऊंची स्थिति है। तब हम सहज संतुष्ट रह पाते हैं। फिर चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, कोई भी आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली हमारे सामने सामना करने आती रहे, चाहे कोई कर्म भोग आता रहे शरीर का, लेकिन हर स्थिति में हम संतुष्ट हैं। और शान भी बाबा ने हमें कितना ऊंचा दिया है। शान क्या दिया है? दिल तख्त नशीन का शान है। तख्त पर बैठना सबसे ऊंची शान माना जाता है ना, जो राजाई पद है उसे सबसे ऊंचा माना जाता है। तो बाबा ने तो हमें स्वराज्य का तिलक दिया है। आज की मुरली में बाबा ने सब यही बात कही, राखी के ऊपर कहा ना, बाप स्वयं बच्चों को स्वराज्य का तिलक देते हैं। उसके ऊपर बाबा ने कहा, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। एक तुलसीदास जी की चौपाई है कि चंदन कौन घिसता है? तुलसीदास। और फिर उससे तिलक कौन लगाता है? तो तुलसीदास कौन है? हम बाबा के बच्चे हैं, तो हम कौन सा चंदन घिसते हैं? वही ज्ञान का चंदन हम घिसते हैं, और फिर स्वराज्य का तिलक उससे बाबा हमें देते हैं। तो हम वर्तमान में भी स्वयं के राजा हैं, और भविष्य में भी हम स्वराज्य अधिकारी बनने वाली, विश्व राज्य अधिकारी बनने वाली आत्माएं हैं। और वो भी एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों तक हम इस प्राप्ति के अधिकारी हैं। लेकिन बाबा कहता है वर्तमान में बाबा के दिल तख्त, वो सबसे ऊंचा तख्त है, बाबा के दिल तख्त पर बैठना। और बाबा के दिल तख्त पर कौन बैठ सकते हैं? बाबा के दिल तख्त पर बैठने वालों की निशानी क्या होगी, क्या उनके अंदर विशेषताएं होंगी जो दिल तख्त नशीन होंगे? बाबा हमेशा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। सच्चाई सफाई का गुण बाबा को बहुत पसंद है। तो जितना हम सच्चे रहते हैं सच्चे बाबा से, और आपस में भी संबंध संपर्क में भी, अंदर कुछ बाहर कुछ है ना, अगर कई आत्माओं का ऐसा व्यवहार होता है कि वो आपके सामने तो आपके लिए अच्छा कहेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन जैसे ही पीठ पीछे हो जाते हैं तो उनकी वृत्ति और भाव बिल्कुल अलग होता है। और उसके कारण कई बार दूसरों को जब पता चलता है तो उनको लगता है कि ये हमको धोखा देते हैं। तो ये व्यवहार भगवान को भी पसंद नहीं है, इसीलिए उसे भोलानाथ बाबा कहते हैं। भोले बच्चे जो सरल स्वभावी होते हैं, सरल स्वभाव में ना चित्त बिल्कुल स्वच्छ है, मन में कोई ऐसी बात नहीं किसी के प्रति, तो फिर हम बाबा के दिल तख्त नशीन होने का अनुभव करते हैं। तो ये शान मान नाम बाबा से हम बाबा के सभी बच्चों को मिला है, और जितना हम संतुष्ट रहते हैं उतना हमें बाबा की दुआएं भी मिलती हैं और परिवार की दुआएं भी मिलती हैं, और ये दुआएं हमारे लिए उड़ती कला का साधन बन जाती हैं, हमें आगे बढ़ाने का साधन बन जाती हैं। तो इसीलिए संतुष्टता का गुण हमें ब्राह्मण जीवन में प्रसन्न भी रखता है और साथ साथ हमें पुरुषार्थ में सहज उड़ती कला का भी अनुभव कराता है। ओम शांति। तुमको